योएल की पुस्तक और लाओडिकिया की सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 14।
परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का इतिहास कब तक वाले भविष्य सूचक प्रश्न द्वारा भी निरूपित किया गया है। उन दोनों और अनेक अन्य प्रतीकों में प्रस्तुत इतिहास 144,000 की मुहरबंदी के समय का प्रतिनिधित्व करता है। उस अवधि में सच्चे और अनेक अन्य झूठे अंतिम वर्षा संदेशों को लेकर वाद विवाद होता है। सच्चा अंतिम वर्षा संदेश केवल एक ही है, पवित्र इतिहास की कथा रेखा, जहां परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य करता है। योएल की पुस्तक के संदर्भ में रखी गई है, जहां नया दाख क्रस एक वर्ग से काट दिया जाता है जबकि दूसरे वर्ग पर उंडेला जाता है। योएल की पुस्तक में कुछ ऐसे विरोधाभास हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। दृष्टांत शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ बगल में रखना है, और इसमें स्वभावतः दो श्रेणियों के बीच एक विरोध निहित होता है। हमने पहले भी योएल की पुस्तक के कुछ विरोधों को छुआ है, ये दर्शाते हुए कि यरूशलेम पर शासन करने वाले मद्यपी, जिनके सिर पर अभिमान का मुकुट है, उनका उन लोगों से विरोधाभास रखा गया है जो महिमा का मुकुट पहनते हैं। हमने अभी तक ये नहीं बताया कि आनंद का प्रतीक लज्जित होने का विपरीत तो है ही, बल्कि उसका समकक्ष भी है। पर ऐसा है और हम इसे दिखाने का इरादा रखते हैं। अल्फा और ओमेगा का विषय भी योएल की पुस्तक में मिलता है, और पहला अंतिम को दर्शाता है का वो सिद्धांत प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस के दो उपदेशों द्वारा भी पुष्टि पाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पिंतेकुस्त के दिन सुबह 9 बजे तीसरा पहर में घटित होता है, और अध्याय 3 में 9वां पहर शाम 3 बजे है, जो संध्या बलिदान का समय था। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस जो संदेश सुनाता है वो एक निजी घर के ऊपर वाले कक्ष में है, पर अध्याय 3 में उसका उपदेश मंदिर में दिया गया है। दोनों सभाओं में पश्चाताप के आह्वान के द्वारा वे आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही संदेश, दो भौगोलिक स्थान, पिंतेकुस्त के संदेश में निहित दोहराव का प्रतीक जो प्रांगण और मंदिर के बीच विभाजित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में यूहन्ना से कहा जाता है कि वो मंदिर का माप ले पर प्रांगण को छोड़ दे, क्योंकि वो अन्य जातियों को दे दिया गया था।
और मुझे एक सरकंडा दिया गया जो छड़ी के समान था, और स्वर्गदूत खड़ा हुआ ये कहते हुए, उठ और परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें आराधना करने वालों को नाप, परंतु मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे और उसे नाप मत, क्योंकि वो अन्य जातियों को दे दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक पैरों तले रौंदेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:1-2।
इस प्रकार दो उपदेशों का दो हराव और उनके स्थान का विभाजन यूएल की पुस्तक में अंतिम वर्षा के लिए दो श्रोताओं की पहचान कराता है। एक समूह मंदिर के बाहर की अन्य जातियां हैं और दूसरा मंदिर के भीतर के यहूदी हैं। जीवितों के न्याय में परमेश्वर के घर का न्याय पहले होता है, और नौ रडोराज से लेकर रविवार के कानून तक मंदिर का न्याय होता है, और रविवार के कानून से लेकर मानव कृपा काल के समापन तक अन्य जातियों का न्याय होता है। वो न्याय उसी अंतिम वर्षा के दौरान होता है जिसे पतरस ने यूएल की पुस्तक में वर्णित बताया है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 3 में जो विभाजन दिखाया गया है, प्रांगण अन्य जातियां और मंदिर परमेश्वर की कलीसिया, वही भेद यूएल में प्रारंभिक वर्षा और अंतिम वर्षा का भी है। प्रारंभिक वर्षा नौरडुरा से लेकर रविवार का न्याय चल रहा है, तब वो उंडेली जाती है। जब वो प्रक्रिया छिशु पूरी हो जाती है, तब प्रांगण में अन्य जातियों पर अंतिम वर्षा उंडेली जाती है।
अतएव हे सियोन के पुत्रो, आनंदित हो और अपने परमेश्वर यहोवा में मगन रहो, क्योंकि उसने तुम्हें उचित रीति से पहली वर्षा दी है, और वो तुम्हारे लिए वर्षा पहली और पिछली पहले महीने में बरसाएगा। योएल 2:10।
वर्तमान में मेरा उदयस आनंद और लज्जित होने के बीच भविष्य सूचक भेद बताना नहीं है, लेकिन ये पद परमेश्वर के लोगों से कहता है कि वे पश्चात वर्षा के संदेश के कारण आनंदित हों। पश्चात वर्षा का ये संदेश परमेश्वर के लोगों में भविष्य सूचक आनंद उत्पन्न करता है। ये कहते हुए
पूर्व या प्रारंभिक वर्षा और उसके बाद आने वाली पश्चात वर्षा का विषय उस ठोकर के पत्थर का एक चित्रण है जिसे अलग रख दिया गया था और जिस पर आश्चर्य किया गया था। वो प्रधान कोने के पत्थर का प्रतीक, जो अंततः शिखर पत्थर बन जाता है, परमेश्वर और उसके लोगों दोनों की आंखों में अद्भुत है।
ये अद्भुत शिलाबा विश्ववाणी के अल्फा और ओमेगा का प्रतिनिधित्व करती है। भविष्यवाणी के अनुप्रयोग की दृष्टि से इस सिद्धांत को उसके वचन में स्वयं अल्फा और ओमेगा ने बार बार चिन्हित किया है, और वही वचन है। इसी कारण इस सिद्धांत का जो कुछ प्रकट किया गया है वो हम और हमारी संतानों के लिए सदा तक है। वर्ष 1863 बाइबल की भविष्यवाणी का शीर्ष पत्थर है, और 1844 से 1863 तक तीसरे स्वर्गदूत के काल का भी यही शीर्ष पत्थर है। 1844 उस भविष्य सूचक काल की नींव का पत्थर था, और 1863 उसका शीर्ष पत्थर। 1844 से 1863 तक का समय एक स्थापित भविष्य सूचक काल है, ठीक वैसे ही स्थापित जैसे 538 से 179 तक। ये तथ्य कि मनुष्य जाति किसी ऐसी बात को नहीं जानती जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, उस बात को अस्थापित नहीं कर देता। हमने पिछले लेख का समापन निम्नलिखित अंश के साथ किया था।
मुझे ये दिखाया गया कि परमेश्वर की प्रजा के साथ उसका संबंध कुछ बातों में इसराइल के साथ मूसा के संबंध के समान था। प्रतिकूल परिस्थितियों में मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने वाले थे और उसके विरुद्ध भी बड़बड़ाने वाले रहे हैं। टेस्टिमोनीज खंड 3 एफ 100।
1863 में जेम्स व्हाइट ने कुछ मायनों में इसराइल के लिए मूसा का प्रतिनिधित्व किया। 1844 से 1863 की अवधि का प्रतिरूप लाल समुद्र पर हुए उद्धार से लेकर प्रथम कादेश तक की अवधि में था। प्रथम कादेश आदि है और द्वितीय कादेश अंत। इससे कादेश तक ले जाने वाली 240 वर्षीय अवधियां प्राप्त होती है, और दोनों का अंत विद्रोह में हुआ।
भविष्यवाणी की आत्मा लाल समुद्र पार करने की घटना को 1845 की महान निराशा के साथ जोड़ती है। बाइबल लाल समुद्र पार करने को क्रूस के साथ जोड़ती है, और सिस्टर व्हाइट पुष्टि करती हैं कि क्रूस पर चेलों की निराशा 1845 की महान निराशा की पूर्व छाया थी। प्रभु की इच्छा थी कि सीधे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश किया जाए, और प्रतिज्ञात देश के प्रवेश का भौगोलिक चिन्ह यरीहो था, और यही वो स्थान है जहां दिसंबर 2025 के इस दूसरे सप्ताह में पुरातत्वविदों ने अभी अभी प्राचीन यरीहो की खुदाई की, परंतु ये देखकर वे हतप्रभ रह गए कि वहां मिली गिरी हुई दीवारें सभी बाहर की ओर गिरी थीं, भीतर की ओर नहीं, जैसा कि घेराबंदी के दौरान हमेशा होता है। प्राचीन घेराबंदी में दीवारों को पीट पीट कर भीतर की ओर गिराया जाता था, यरीहो में ऐसा नहीं हुआ।
तब जब याजकों ने तुरहियों में फूंका तो लोगों ने जय घोष किया, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी और लोगों ने बड़ा जय घोष किया, तब दीवार सपाट गिर पड़ी, जिससे लोग हर एक अपने सामने सीधे नगर के भीतर ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने उस नगर पर अधिकार कर लिया। यहोशू 6:20।
पुरातत्वविदों को भोजन से भरे मटके भी मिले, जिससे ये पता चला कि जब दीवारें गिरीं तो वो कोई लंबी खिंची हुई घेराबंदी नहीं थी। इससे पुरातत्व दल के बीच ये प्रश्न भी सुलझ गया कि यरीहो के पतन के बाइबिलीय वृत्तांत में उनके किसी टीले या रैंप के ऊपर से यरीहो में ऊपर चढ़कर जाने का उल्लेख क्यों है। अब वे जानते हैं कि दीवारें बाहर की ओर गिरने पर वही टीला या रैंप बना था। प्रतिज्ञा देश में प्रवेश का संकेत देने वाली पहली बाधा यरीहो था, जो प्रभाव और समृद्धि का नगर था। यरीहो 1863 है, और यरीहो बाइबल की भविष्यवाणी का विषय है, न केवल रविवार के कानून के समय काल के उदाहरण के रूप में, बल्कि उसके पतन और उत्थान के संदर्भ में भी। यरीहो पर एक विशिष्ट भविष्य सूचक शाप भी घोषित किया गया था। यहोशू ने उस व्यक्ति पर शाप घोषित किया जो यरीहो का पुनर्निर्माण करेगा, और ऐसा करते हुए ये बताया कि उस शापित नगर का पुनर्निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने सबसे छोटे और सबसे बड़े पुत्रों को उसके पुनर्निर्माण के दौरान खो देगा। एक पुत्र नींव रखते समय और दूसरा फाटक खड़ा करते समय खो जाएगा,
वो भविष्यवाणी पूरी हुई और उसके पूरा होने का विवरण बाइबल में दर्ज है, जिससे यरीहो एक स्थापित बाइबलीय प्रतीक बनता है। यरीहो के ऐतिहासिक पतन में और उस पर दिए गए भविष्य सूचक शाप में, जिसके बाद उस भविष्यवाणी की ऐतिहासिक परिपूर्ति हुई, हम 1813-33 में यरीहो के बारे में बोलते हुए तीन साक्षियों को पाते हैं। उन तीनों गवाहियों को 1813-33 पर लागू किया जाना है। वे तीनों साक्षी वैसे ही एक साथ खड़े हैं जैसे तीन मूसा अपने अपने 40 वर्षीय काल के अंत में भविष्य सूचक अर्थ में खड़े होते हैं। उन 40 वर्षीय कालों में से एक स्पष्ट रूप से मिलराइट इतिहास से मेल खाता है, जिससे ये स्थापित होता है कि प्रत्येक 40 वर्षीय काल के अंत में मूसा के तीनों प्रतिनिधित्व 1813-33 में इतिहास तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास से मेल खाते हैं। मूसा के 40 वर्षों के उन तीन साक्षियों में से दो कादेश पर समाप्त हुए थे, तीसरे का अंत यर्दन नदी पर हुआ था और दूसरे का अंत लाल सागर पर हुआ था। पहले 40 वर्षों का अंत मूसा का मिस्र से भाग जाना था। ये तीनों मिस्र में दासत्व के विषय में अब्राहम की 430 वर्ष की भविष्यवाणी की पूर्ति में मिस्र से पलायन का वर्णन करते हैं। मूसा के जीवन की 340 वर्षीय अवधिया, जिनके अंत शीर्ष बिंदु मिस्र से मुक्ति के एक प्रतिरूप को दर्शाते हैं। मिस्री दासता में बंधन और उससे मुक्ति के विषय में अब्राहम की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। अब्राहम की वाचा की प्रतिज्ञा के भविष्यवाणी किए गए उद्धारकर्ता के रूप में मूसा ने स्वयं पानी से निकाले जाने से शुरुआत की, यही उसके नाम का अर्थ है। इसके बाद मूसा ने परमेश्वर की प्रजा को लाल सागर के जल के बीच से ले चला और फिर उन्हें उस मुक्ति के तट तक पहुंचाया जिसका प्रतीक यर्दन नदी है। मूसा के जीवन का अल्फा नील नदी के जल से बचाया जाना था और ओमेगा यर्दन नदी के जल द्वारा प्रतीकित उद्धार था। मूसा के जीवन का ये अल्फा उसके नाम से परिभाषित अनुभव में दिखाई देता है और उसके माता पिता, जो धर्मपरायण थे, जानते थे कि उस शिशु को मृत्युदंड सुनाया गया था, जैसा कि 40 वर्ष बाद एक मिस्री को मार डालने पर उसके साथ होने वाला था। धर्मपरायण माता पिता होने के नाते, जो जानते थे कि उनके पुत्र को उस मृत्युदंड से बचाया जाना आवश्यक है, उन्होंने उसके लिए एक पेटिका तैयार की जो इब्रानी जगत से निकलकर मिस्री जगत में चली गई, ठीक वैसे ही जैसे 40 वर्ष के अंत में मूसा ने मिस्री जगत को छोड़कर इब्रानी जगत का रुख किया। मूसा ने पानी से अपने उद्धार में नूह की कथा को दोहराया। मूसा का उद्धारकर्ता के रूप में सबसे पहला उल्लेख, जो अब्राहम की 430 वर्षों वाली वाचा भविष्यवाणी से जुड़ा है, उसी इतिहास की पुनरावृत्ति था जब परमेश्वर ने मानव जाति के साथ वाचा बांधी। इस प्रकार अब्राहम की चुनी हुई प्रजा के विषय में वाचा भविष्यवाणी मानव जाति के लिए की गई वाचा प्रतिज्ञा से एक हो जाती है। ये शिशु मूसा को फिरौन की बेटी के पास सौंपे जाने में बपतिस्मा की पहचान कराता है, क्योंकि मृत्यु को माता पिता के कर्म द्वारा स्वीकार किया गया दफन का प्रतिनिधित्व पानी पर संदूक द्वारा होता है और पुनरुत्थान का प्रतीक फिरौन की बेटी है। मूसा का जीवन उस प्रतिरूप से शुरू होता है जिसमें नूह की नाव को बपतिस्मा का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ ये है कि आरंभ से ही संख्या 8 मूसा से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके वाचा संबंध की जड़ नूह की वाचा के 8 अंक से आरंभ हुई और उसका कार्य 8वें दिन खतना की रीति स्थापित करना था। तब उसकी परीक्षा हुई और वो उसी रीति में असफल रहा। मूसा का जीवन एक बपतिस्मा से शुरू होता है और 40 वर्ष बाद एक मृत्यु एक मिस्री की घटती है, जो उस बिंदु को चिह्नित करती है जहां मिस्री मूसा मर जाता है और वो पूरी तरह अब्राहम का पुत्र बन जाता है। मूसा के पहले 40 वर्षों की शुरुआत और समाप्ति एक बपतिस्मा द्वारा निरूपित है। पहला इब्रानी से मिस्री में परिवर्तन को दर्शाता है और अंतिम मिस्री से इब्रानी में। उसके 40 वर्ष बाद मूसा परमेश्वर की प्रजा को लाल समुद्र के बपतिस्मा से ले जाता है यर्दन के बपतिस्मा की ओर, जहां तक वो कभी पहुंचा नहीं। यहोशू के मार्गदर्शन में परमेश्वर की प्रजा मूसा के बिना ही प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर गई, क्योंकि यर्दन नदी में बपतिस्मे का समय आने से ठीक पहले ही वे मर गए थे। मूसा ने कहा था और पतरस ने भी दोहराया कि तेरे परमेश्वर यहोवा तुझमें से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। जिस भविष्यद्वक्ता का प्रतिरूप मूसा थे वह मसीह था, और उन्होंने अपना कार्य ठीक वहीं से आरंभ किया जहां मूसा ने छोड़ा था। उन्होंने अपना कार्य अपने बपतिस्मा से आरंभ किया, और वो बपतिस्मा वही स्थान था जहां यहोशू ने प्राचीन इसराइल को तब बपतिस्मा दिया जब वे यर्दन पार करके प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर रहे थे। सुसमाचार हमें बताते हैं कि यूहन्ना बैतहबरा में बपतिस्मा दे रहा था, जो पार उतरने का स्थान है और जिसका अर्थ नाव से पार कराने का स्थान होता है। लाल सागर मिस्र के विद्रोह का प्रतीक है, जो इस श्रृंखला में मूसा की भविष्य सूचक गवाही को सत्य ठहराता है। नील नदी से लाल सागर तक, जिसे कभी कभी नदी भी कहा जाता है, और आगे यर्दन नदी तक, मूसा, जिसका अर्थ है पानी से बचाया गया, अपनी गवाही उद्धार के जल से आरंभ करता है और उसी पर समाप्त करता है, और उन प्रत्येक जलों में आराधकों के दो वर्ग प्रकट होते हैं। मूसा के जीवन के पहले 40 वर्ष पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे 40 वर्ष दूसरे स्वर्गदूत का, और तीसरे 40 वर्ष तीसरे स्वर्गदूत का। ये तीनों स्वर्गदूत अपनी अपनी विशिष्ट भविष्य सूचक विशेषताएं रखते हैं। उदाहरण के लिए, तीनों संदेश पहले संदेश में ही समाहित हैं। हम इस घटना को दानियेल की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों के संदर्भ में वर्षों से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते आए हैं। पहले अध्याय में 3 दानियेल ने परमेश्वर का भय माना और बाबुल का भोजन खाने से इनकार कर दिया, और उसके बाद हुई दूसरी आहार और रूपरन की परीक्षा में परमेश्वर ने उसे महिमा दी, जिससे अंततः स्वयं नबूकदनेस्सर द्वारा किया गया न्याय और तीसरी परीक्षा हुई। दानियेल का पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का पहला स्वर्गदूत है, जो ये घोषणा करता है, परमेश्वर से डरो, उसे महिमा दो, जैसा दानियेल ने दूसरी आहार और रूप रंग की परीक्षा में किया, क्योंकि नबूकदनेस्सर के न्याय का समय आ गया है। मूसा के जीवन के पहले 40 वर्ष इसलिए शुरू हुए क्योंकि उसके माता पिता ने परमेश्वर से डरते थे। जब फिरौनी की बेटी ने पानी में संदूक देखा, तब मूसा ने दूसरी परीक्षा यानी दृष्टिगत परीक्षा पास कर ली थी। तब फिरौन की बेटी ने ये निर्णय किया कि उसे मरना नहीं चाहिए। पहले 40 वर्षों के अंत में भी न्याय आया, जब उसने एक मिस्री को मार डाला और उसे मिस्र से भागना पड़ा। दूसरे 40 वर्षों में प्रकाशित वाक्य 14 के दूसरे स्वर्गदूत द्वारा बाबुल के पतन की घोषणा को मिस्र के पतन द्वारा प्रतिकीत किया गया था। उस पतन में 40 वर्षों के अंत में परमेश्वर की शक्ति का एक अत्यंत महान प्रगटीकरण हुआ, जैसा कि 1844 की आधी रात की पुकार के दौरान दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के अंत में हुआ था। तीसरा 40 वर्षीय काल लगभग पूरी मंडली पर मृत्युदंड खहराए जाने से शुरू होता है, और उसी मंडली के नेता पर मृत्युदंड खहराए जाने के साथ समाप्त होता है। बहन व्हाइट बताती हैं कि हमारा कार्य 3 स्वर्गदूतों के संदेशों को एक साथ मिलाना है।
प्रभु संसार को उसके अधर्म के कारण दंडित करने ही वाले हैं। वे धार्मिक संस्थाओं को उन्हें दिए गए प्रकाश और सत्य को अस्वीकार करने के कारण दंडित करने वाले हैं। पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को मिलाकर जो महान संदेश है, उसे संसार को दिया जाना है। यही हमारे कार्य का मुख्य दायित्व होना है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, 9-5 दशमक।
मूसा की पहली 40 वर्षीय आबादी प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के पहले स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करती है, और उनकी दूसरी 40 वर्षीय आबादी दूसरा स्वर्गदूत है, और उनकी तीसरी 40 वर्षीय आबादी तीसरा स्वर्गदूत है। हमारा महान संदेश पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को एक साथ मिलाना है, जो मूसा के तीनों प्रतीकों को 1863 में स्थापित करता है, और इसलिए रविवार के कानून के समय 3 मूसा होते हैं। 150 से 163 की अवधि में कादेश तक ले जाने वाली दोनों 40 वर्षीय अवधियों के 2 साक्षीय सम्मिलित सही। प्रेरणा यह इंगित करती है कि पहली और दूसरी के बिना तीसरी का अस्तित्व नहीं हो सकता। मूसा के जीवन के पहले 40 वर्ष भी 150 से 163 का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 163 में मूसा मिस्री को मारता है, साथ ही मूसा अपनी अधिकार की छड़ी से चट्टान पर प्रहार करता है, और सोने के बछड़े के विद्रोह के इतिहास में जब मूसा परमेश्वर की महिमा देखने का निवेदन करता है, वो भी उसी समय है। 163 और रविवार के कानून के समय 3 मूसा है और वे सभी 40 वर्ष के हैं।
मूसा के तीनों कालों में प्रत्येक में पानी के द्वारा एक उद्धार है। टोकरी में मूसा लाल समुद्र से होकर जाने वाले मूसा के साथ मेल खाता है और ये यर्दन नदी पर मूसा के दो बार वाले प्रसंग से मेल खाता है, नील, लाल समुद्र और यर्दन पर दो बार। तीनों कालों में उद्धार के जल का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि वे सब उस काल से संगत हैं जब अंतिम वर्षा के दौरान उद्धार का जल उंडेला जा रहा होता है। 40 वर्षों की तीसरी अवधि के अंत में मूसा ने अपनी लाठी से चट्टान पर प्रहार किया। दूसरे 40 वर्षों के अंत में उसकी लाठी ने लाल सागर को चीर दिया। पहले 40 वर्षों के अंत में उसने मिस्री सत्ता के राजदंड का त्याग किया और अपने लोगों के साथ कष्ट सहना चुना। पहली अवधि के अंत में एक मिस्री मर गया और दूसरी अवधि के अंत में मिस्र की सेना, उसके पहलौठे और उसका नेतृत्व मर गए। तीसरी अवधि के अंत में इसराइल राष्ट्र, हारून और मूसा सब मर चुके थे। ये 3 समानांतर इतिहास हैं जो पंक्ति पर पंक्ति प्रत्येक 1844 से 1863 तीसरे स्वर्गदूत का इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आगे चलकर नाइनगेलर से रविवार के कानून तक और उस पेंटिकोस्ट के समय का प्रतिनिधित्व करता है जब मुक्ति का जल उंडेला जाता है। मूसा कादेश के दोनों विद्रोहों में उपस्थित थे और कादेश के वे विद्रोह अपने अपने कालखंडों में शिखर पत्थर है। वे दोनों 1863 का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तीसरे स्वर्गदूत की अवधि का भी शिखर पत्थर है। ये 1844 के अल्फा से आरंभ होकर 1863 के शिखर पत्थर तक चलता है, जब उस पत्थर के अद्भुत प्रकाश पर विचार किया जाता है जो नींव के रूप में शुरू होकर शिखर पत्थर पर समाप्त होता है। तब ये समझा जाता है कि शिखर पत्थर भविष्य सूचक दृष्टि से बड़ा होता है। पेंटेकोस्ट के काल की शुरुआत में पड़ी कुछ बूंदें जो पेंटेकोस्ट के दिन शिखर पत्थर पर होने वाले पूर्ण उंडे ले जाने तक ले जाती हैं, इस सत्य को दर्शाती हैं।
9/11 के समय छिड़काव आरंभ हुआ और यह रविवार के कानून पर होने वाले पूर्ण उंडेलन पर समाप्त होता है। ये सत्य दूसरे ओमेगा कादेश में मूसा के पाप को पहले अल्फा कादेश के विद्रोह से भी बड़ा पाप ठहराता है। अल्फा विद्रोह का परिणाम पूरे राष्ट्र की मृत्यु था और ओमेगा विद्रोह का परिणाम एक मनुष्य मूसा की मृत्यु था, परंतु उस एक मनुष्य का पाप समूचे राष्ट्र के सामूहिक पाप से भी बड़ा था। जो पाप करता है वही मरता है, और उस स्तर पर मूसा के पाप और किसी अन्य इसराइली के पाप के बीच कोई भेद नहीं है। परंतु भविष्य सूचक दृष्टि से मूसा द्वारा मसीह को दूसरी बार प्रहार करना अधिक गंभीर था, क्योंकि वो उस 40 वर्षीय काल की पराकाष्ठा था। दूसरे ओमेगा कादेश में मूसा का विद्रोह इसराइल की संतान द्वारा यहोशू और कालेब के संदेश को अस्वीकार करने के विद्रोह से बड़ा पाप था। मूसा भविष्यवाणी की दृष्टि से 1863 पर खड़ा है, जहां वो अपने विद्रोह के कारण मरुभूमि में मरता है। मूसा 1863 पर भी खड़ा है, जहां पूर्व वाचा के लोग अपने विद्रोह के कारण मरुभूमि में मरते हैं, परंतु मूसा उस विद्रोह में सहभागी नहीं था। 1863 रविवार के कानून के साथ मेल खाता है और हारून का सुनहरे बछड़े वाला विद्रोह भी मेल खाता है। उस इतिहास में जो कादेश 1863 और रविवार के कानून के साथ मेल खाता है, मूसा परमेश्वर की महिमा देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है।
कादेश 863 का प्रतिनिधित्व करता है और मूसा दोनों कादेशों में है, इसलिए दो बाइबल गवाहों के आधार पर जो दोनों ही शीर्ष शिलाएं हैं, हम ये स्थापित करते हैं कि तीसरी 40 वर्षीय अवधि जो कादेश पर समाप्त नहीं होती भी 863 का प्रतिनिधित्व करती है। वहां अपवित्र मूसा चट्टान को अस्वीकार करते हुए मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहा है। 863 में और सीनै पर व्यवस्था दिए जाने से समय पवित्रीकृत मूसा परमेश्वर के चरित्र की खोज कर रहा है। 863 में मूसा एक बुद्धिमान और साथ ही एक मूर्ख कुमारी का प्रतिनिधित्व करता है।
फरीसी और चुंगी लेने वाला उन दो बड़ी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें परमेश्वर की आराधना करने आने वाले लोग विभाजित हो जाते हैं। उनके प्रथम दो प्रतिनिधि संसार में जन्मे पहले दो बच्चों में मिलते हैं। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 15:20।
कादेश में और 1863 में मूसा दो महान वर्ग जिनमें वे लोग जो ईश्वर की उपासना करते हैं विभाजित हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूसा 144,000 का उदाहरण है, जैसे पीटर भी हैं।
फरीसी और महसूल लेने वाले द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरित पतरस के इतिहास में एक शिक्षा है। अपने शिष्यत्व के प्रारंभिक दिनों में पतरस ने स्वयं को मजबूत समझा। फरीसी की तरह अपनी ही दृष्टि में वो अन्य मनुष्यों जैसा नहीं था। जब मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से ठीक पहले अपने शिष्यों को चेताया, तुम सब इस रात मेरे कारण ठोकर खाओगे, तो पतरस ने आत्मविश्वास से कहा, यदि सब ठोकर खाएं, तो भी मैं नहीं। Mark 14:27-9। पतरस अपने ही खतरे से अनजान था। आत्मविश्वास ने उसे भटका दिया। वो अपने को प्रलोभन का सामना करने में सक्षम समझता था, परंतु कुछ ही घंटों में परीक्षा आ गई और उसने शाप देकर और शपथ खाकर अपने प्रभु का तर्कीय ले दिया। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 52।
रविवार के कानून के समय जो 1863 है, पतरस दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, एक जो पशु का चिन्ह प्राप्त करते हैं और दूसरे जो परमेश्वर की मुहर प्राप्त करते हैं। जब यीशु ने शमौन का नाम बदलकर पतरस रखा तो वो 144,000 का प्रतीक था। वही समझ इस बात से भी प्रतीकित होती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की क्रम संख्या लेकर पतरस के नाम को संख्याओं में बदलकर उन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। यदि हम वही तकनीक 1863 पर लागू करें तो 6600 प्राप्त होता है। मूसा के 88:363 से मेल खाने वाले तीन प्रतीकों में से दो ये सिद्ध करते हैं कि तीसरा कालखंड भी मेल खाना चाहिए। कादेश की दो रेखाएं बुद्धिमान और मूर्ख कुमारियों की कथा को दर्शाती हैं और तीसरा कालखंड एक ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए मानव प्रयास का सहारा लेने के एक प्रयत्न को चिह्नित करता है। जैसा मूसा ने उस मिस्री के साथ किया, वैसा मानव शक्ति पर भरोसा करना दैवी रूप से नियुक्त अधिकार के ऊपर मानव अधिकार पर भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टर वाइक कहती हैं कि उनके पति का परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध कुछ बातों में इज़राइल के प्रति मूसा के संबंध के समान था। 1863 में मूसा का प्रतिनिधित्व जेम्स वाइट ने किया। 1863 में जेम्स वाइट एक मिस्री को मार डाल रहे हैं, मसीह पर दूसरी बार प्रहार कर रहे हैं और उन विद्रोहियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने यहोशू और कालेब द्वारा प्रस्तुत विश्राम के संदेश को अस्वीकार कर दिया। मूसा मूर्ख कुमारी भी है जब उसने चट्टान पर दूसरी बार प्रहार किया, और बुद्धिमान कुमारी भी है जब उसने इज़राइल के विद्रोहियों के लिए मध्यस्थता की। हम इस लेख का समापन गिनती 14 के उस अंश से करेंगे जिसमें मूसा 1863 में है और सोने के बछड़े के विद्रोह द्वारा दर्शाए गए समानांतर इतिहास में उसे परमेश्वर की महिमा का दर्शन दिया जाता है। इस खंड में प्रभु पूछते हैं, कब तक उन्हें इज़राइल के विद्रोहियों से निपटना होगा? यही प्रश्न यशाया ने भी 6 अध्याय में प्रभु से पूछा था। ध्यान दें कि गिनती की पुस्तक इस इतिहास को उस काल में रखती है जब पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से आलोकित होती है, जैसा कि यशाया 6:3 में स्वर्गदूतों ने भी संकेत किया है। नान गैरा के 18:22-1 के इतिहास का नींव का पत्थर था और रविवार का कानून उसकी मुकुट शिला है। गिनती में प्रस्तुत परिदृश्य दाख की बारी के गीत या दृष्टांत का ही एक चित्रण है, क्योंकि जब प्रभु यहोशू के साथ वाचा में प्रवेश कर रहे थे तब प्राचीन इज़राइल को पीछे छोड़ दिया जा रहा था
और सारी मंडली ने ऊंचे स्वर से पुकार कर रोया और लोग उस रात रोते रहे, और इज़राइल की सारी संतान ने मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाया और पूरी मंडली ने उनसे कहा, काश हम मिस्र देश में ही मर गए होते, या काश हम इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा ने हमें इस देश में क्यों पहुंचाया कि हम तलवार से गिरें और हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे लूट बन जाए? क्या हमारे लिए मिस्र को लौट जाना बेहतर न होगा? और वे आपस में कहने लगे, आओ हम अपने लिए एक प्रधान ठहराएं और मिस्र को लौट चले।
तब मूसा और हारून समस्त इज़राइली मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े
और नून का पुत्र यहोशू तथा येफुन्ने का पुत्र कालेब, जो उस देश की टोह लेने वालों में से थे, ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और उन्होंने इसराइलियों की समस्त मंडली से कहा,
जिस भूमि की खोज करने के लिए हम होकर आए हैं वो अत्यंत उत्तम भूमि है। यदि प्रभु हमसे प्रसन्न हो तो वो हमें इस भूमि में ले आएगा और इसे हमें दे देगा, ऐसी भूमि जो दूध और मधु से बहती है। केवल तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह न करो और न उस भूमि के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारे लिए भोजन के समान हैं। उनकी रक्षा उनसे हट गई है और प्रभु हमारे साथ है, उनसे मत डरो।
परंतु पूरी मंडली ने उन्हें पत्थरों से मार डालने को कहा। तब यहोवा की महिमा मंडली के तंबू ये प्रकट हुई समस्त इसराइलियों के सामने, और यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मुझे उकसाते रहेंगे और कब तक वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? उन सब चिन्हों के बावजूद जो मैंने उनके बीच दिखाए हैं,
मैं उन्हें महामारी से मारूंगा, उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दूंगा और तुझसे उनसे बड़ा और अधिक शक्तिशाली एक राष्ट्र बनाऊंगा।
और मूसा ने प्रभु से कहा, तब मिस्रवासी इसे सुनेंगे, क्योंकि तूने अपनी सामर्थ्य से इस प्रजा को उनके बीच से निकाल लाया है, और वे इस देश के निवासियों को ये बता देंगे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि तू हे प्रभु इस प्रजा के बीच है, कि तू हे प्रभु उनसे आमने सामने दिखाई देता है, और कि तेरा बादल उन पर ठहरा रहता है, और कि तू दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के खंभे में उनके आगे चलता है। अब यदि तू इस सारी प्रजा को एक ही मनुष्य के समान मार डाले, तो वे जातियां जिन्होंने तेरी कीर्ति का समाचार सुना है कहेंगी कि प्रभु इस प्रजा को उस देश में जिसकी शपथ उसने उनसे खाई थी पहुँचाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उन्हें जंगल में मार डाला।
और अब मैं तुझसे बुदाई करता हूँ, जैसा तूने कहा है वैसे ही मेरे प्रभु की शक्ति महान ठहरे। प्रभु दीर्घ धैर्यवान और अति दयालु है, वो अधर्म और अपराध को क्षमा करता है पर दोषी को किसी रीति से निर्दोष नहीं ठहराता। वो पितरों के अधर्म का दंड बच्चों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता है। मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार इस प्रजा के अधर्म को क्षमा कर, जैसे तूने इस प्रजा को मिस्र से लेकर अब तक क्षमा किया है।
और प्रभु ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मैंने क्षमा कर दिया है, परंतु सचमुच जैसा कि मैं जीवित हूँ सारी पृथ्वी प्रभु की महिमा से भर जाएगी,
क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा और वे चमत्कार जो मैंने मिस्र में और जंगल में किए देखे हैं अब तक 10 बार मुझे परखा है और मेरी वाणी नहीं मानी है, निश्चय वे उस देश को नहीं देखेंगे जिसकी शपथ मैंने उनके पितरों से खाई थी। जिन्होंने मुझे उकसाया है उनमें से कोई भी उसे नहीं देखेगा, परंतु मेरा सेवक कालेब, क्योंकि उसमें भिन्न आत्मा थी और वो पूरी रीति से मेरे पीछे चला, उसे मैं उस देश में ले जाऊंगा जहां वो गया था, और उसकी संतान उसे अधिकार में लेगी। अब अमालेकी और कनानी घाटी में रहते थे। कल तुम लौटो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर निकल जाओ।
और यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये दुष्ट सभा जो मेरे विरुद्ध बड़बड़ाती है उसे मैं कब तक सहूं? मैंने इसराइल की संतान की बड़बड़ाहट सुनी है जो वे मेरे विरुद्ध करते रहे हैं। उनसे कहो, जीवित हूं मैं, यहोवा की ये वाणी, कि जैसे तुमने मेरे कानों में कहा है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम्हारी लाशें इस जंगल में गिर पड़ेंगी और तुम में से जो जो गिने गए थे अर्थात तुम्हारी कुल संख्या के अनुसार 20 वर्ष के और उससे ऊपर के सब जिन्होंने मेरे विरुद्ध बड़बड़ाया है निश्चय उस देश में न पहुंचेंगे जिसके विषय में मैंने शपथ खाई थी कि तुम्हें वहां बसाऊंगा, केवल यफुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोवाशू छोड़कर। पर तुम्हारे बालक जिनके विषय में तुमने कहा था कि वे लूट का शिकार होंगे उन्हें मैं वहां पहुंचाऊंगा और वे उस देश को जानेंगे जिसे तुमने तुच्छ जाना था। पर तुम्हारे विषय में तुम्हारी लाशें वे इस जंगल में गिरेंगी और तुम्हारे बच्चे 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहेंगे और तुम्हारे व्यभिचार का दंड उठाएंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें गिरेंगी जंगल में नष्ट न हो जाएं। जितने दिन तुमने उस देश की टोह ली
अर्थात 40 दिन, एक दिन एक वर्ष के हिसाब से उतने ही वर्षों तक 40 वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड उठाओगे और तुम मेरे प्रतिज्ञा भंग को जानोगे।
मैं यहोवा ने कहा है, मैं निश्चय ही इस सारी दुष्ट सभा के साथ ऐसा ही करूंगा जो मेरे विरुद्ध इकट्ठी हुई है। इस जंगल में वे नष्ट हो जाएंगे और वहीं वे मरेंगे, और वे पुरुष जिन्हें मूसा ने उस देश की टो लेने के लिए भेजा था, जो लौटकर उस देश की निंदा करके सारी सभा को मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने पर उकसाते थे, वही पुरुष जिन्होंने उस देश के विषय में बुरी खबर फैलाई थी, यहोवा के सामने महामारी से मर गए।
परंतु नून का पुत्र यहोशू और यहफुन्ने का पुत्र कालेब, जो उन पुरुषों में से थे जो उस देश की खोज करने गए थे, जीवित रहे। गिनती 14:1-48।
हम इन विचारों को अगले लेख में आगे जारी रखेंगे।